लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप एक्का। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 9 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
नेल वांजेलो दे ओजी Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo.
आज के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। वे उन लोगों को जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं, दुनिया में उनकी उपस्थिति को जीने एवं साक्ष्य देने के मापदंडों का पालन करने के बारे बतलाते हुए प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला प्रतीक है नमक। नमक एक ऐसी चीज है जो भोजन का स्वाद बढ़ाती, उसे संरक्षित रखती और नष्ट होने से बचाती है। उसी तरह शिष्य लोगों के जीवन को विषक्त करने वाले समाज के खतरे एवं संसारण रोगाणुओं से बचाने के लिए बुलाया जाता है। संत पापा ने कहा कि यह पाप और अनैतिकता से बचने तथा कैरियरवाद, सत्ता एवं धन के सांसारिक मोह में पड़े बिना ईमानदारी और भाईचारा के मूल्यों का साक्ष्य देने का निमंत्रण है। उन्होंने कहा, एक शिष्य नमक है जो दैनिक असफलताओं के बावजूद, जो कि हम सभी में कमजोरियां हैं, अपनी गलतियों के धूल से ऊपर उठता तथा साहस एवं धीरज के साथ हर एक दिन वार्ता एवं दूसरों के साथ मुलाकात की पुनः शुरुआत करता है। शिष्य नमक है जो आम सहमति एवं प्रशंसा की खोज नहीं करता, बल्कि विनम्र एवं निर्माणात्मक उपस्थिति द्वारा यीशु की शिक्षा के प्रति वफादार रहते हुए, जो इस संसार में सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए, उनका साक्ष्य देता है। संत पापा ने कहा कि यह मनोभाव बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरा प्रतीक है दीपक। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। दीपक अंधकार दूर करता और राह दिखलाता है। यीशु प्रकाश हैं जिन्होंने अंधकार दूर किया है। संत पापा ने कहा, किंतु यह अंधकार अब भी संसार में है और लोगों में बचा हुआ है। यह ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि वे ख्रिस्त की ज्योति फैलाने एवं सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा उस अंधकार को समाप्त करें। उस अंधकार को हम अपने सुवचनों से कम कर सकते हैं, किंतु सबसे बढ़कर हमारे भले कार्यों द्वारा उसे दूर कर सकते हैं।
Un discepolo e una comunità cristiana sono luce nel mondo quando indirizzano gli altri a Dio, aiutando ciascuno a fare esperienza della sua bontà e della sua misericordia.
Sant Papa ne kaha ki ek shishya evam ek Christ samudaya sansar ki jyoti hai, yadi va dusron ko Christ ki or prerit karta aur unki achchai evam karuna ka anubhav karata hai. यीशु का शिष्य जो दीपक है, वह अपने विश्वास को सीमित क्षेत्र से बाहर जीना जानता है। जब वह पूर्वाग्रह एवं झूठी निंदा को दूर करने में मदद देता है एवं झूठ तथा दिखावे द्वारा बिगड़े माहौल में सच्चाई का प्रकाश लाता है। संत पापा ने ख्रिस्त को केंद्र में रखने की याद दिलाते हुए कहा, हमें प्रकाश लाना है किंतु अपना नहीं, ख्रिस्त का प्रकाश। हम ख्रिस्त के प्रकाश को सभी लोगों तक पहुंचाने के माध्यम बने। यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम संसार में जीने से ना डरें, यद्यपि संघर्ष एवं पाप की स्थिति है, हिंसा, अन्याय एवं शोषण के सामने कलीसिया और ख्रिस्ते अपने आप में अथवा अपनी चार दीवारी के अंदर सुरक्षित बंद होकर नहीं रह सकते। अपने आप में बंद होकर कलीसिया सुसमाचार का प्रचार एवं सेवा के मिशन को नहीं छोड़ सकती। अंतिम ब्यारे में यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें संसार से अलग ना करें, वे उन्हें वहाँ रहने दें, किंतु सांसारिक मनोभाव से बचाएं। संत पापा ने कहा कि कलीसिया निम्न और गरीब लोगों के लिए उदारता एवं कोमलता से अपने आप को समर्पित करती है। यह दुनियावी मनोभाव नहीं है, बल्कि दीपक एवं प्रकाश का मनोभाव है। कलीसिया सबसे पिछड़े एवं बहिष्कृत लोगों की आवाज सुनती है, क्योंकि वह यात्री कलीसिया होने तथा इतिहास में यीशु ख्रिस्त की मुक्तिदायी उपस्थिति को आगे बढ़ाने हेतु बुलाए जाने के प्रति सचेत है। संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना की कि धन्य कुमारी मरियम, हमें लोगों के बीच नमक एवं दीपक बनने में मदद दें, ताकि हम अपने जीवन और वचन के माध्यम से ईश्वर के शुभ संदेश को सभी लोगों तक पहुंचा सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunc avit Maria.
Et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत विभिन्न सूचनाएं जारी करते हुए संत पापा ने कहा,
नेला मेमोरिया लिटुर्जिका दि सांता जुसेपिना बाखिता सी ए सेलेब्राता ला जोर्नाता मोंडियाले।
कल संत जुसेपिना बाखिता के पर्व के उपलक्ष्य में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व प्रार्थना एवं चिंतन दिवस मनाया गया। हमें इस महामारी से चंगाई पाना है, क्योंकि यह सचमुच एक बड़ी महामारी है जो दुर्बलों का शोषण करती है। इसको दूर करने के लिए हरेक की, खासकर संस्थाओं, संगठनों एवं शिक्षण एजेंसियों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। संत पापा ने गौर किया कि अपराधी संगठन आधुनिक संचार साधनों का उपयोग कर धोखे से लोगों को फंसाने हेतु किस तरह बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अतः यह आवश्यक है कि एक ओर तकनीकी माध्यम के स्वस्थ प्रयोग के बारे शिक्षा दी जाए, वहीं दूसरी ओर इन टेलीमैटिक सेवाओं की आपूर्तिकर्ताओं के जिम्मेदारियों का पर्यवेक्षण एवं आह्वान किया जाए। सीरिया में चल रहे संघर्ष की याद करते हुए संत पापा ने कहा,
continuano aggiungere notizie dolorose dal nord ovest della Siria.
सीरिया के उत्तर पश्चिम से दुखद समाचार आना जारी है, खासकर कई महिलाओं और बच्चों की स्थिति, जिन्हें सैन्य वृद्धि के कारण घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं नेताओं से हार्दिक अपील दोहराता हूं कि जीवन की रक्षा एवं नागरिकों की कुशलता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप वार्ता और समझौता का रास्ता अपनाएं। उन्होंने सीरिया के सभी लोगों के लिए माता मरियम से प्रार्थना की,
प्रेगियामो पर क्वेस्टा अमाता ए मार्टोरियाता सीरिया।
तत्पश्चात उन्होंने इटली एवं अन्य देशों के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया।
सलूटो टूटी वोई प्रोवेनिएंटे दाल इटालिया दे आल्ट्री पाएसी।
और अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
पर फावोरे नॉन डिमेंटिकातेवी दी प्रेगारे पर मे बुन प्रांसो ए अरिवेदर्ची।
मानव का मन दम्भ।
वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कोलंबस के शूरवीरों को करुणा के कार्यों की शताब्दी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया। संत पापा ने कहा, बेनेडिक्ट 16वें ने कोलंबस के शूरवीरों को प्रथम विश्व युद्ध की तबाही से प्रभावित युवा लोगों की मानवीय सेवा हेतु निमंत्रण दिया था। उन्होंने बड़ी उदारता में इसका प्रत्युत्तर देते हुए उनके लिए खेल कूद केंद्रों की स्थापना की, जो अतिशीघ्र उनके लिए शिक्षा, धार्मिक प्रशिक्षण, भोजन वितरण और अन्य जरूरी कार्यों के स्थल बन गए। इस भांति आपकी संस्था माननीय संस्थापक माइकल मैकविनी के आदर्शों और कार्यों पर खरा उतरती है, जो ख्रिस्ते करुणा के सिद्धांतों से प्रेरित भ्रातृत्व में अति जरूरतमंद लोगों की सेवा की। संत पापा ने कहा कि आज भी कोलंबस के शूरवीर अपने करुणा के कार्यों द्वारा सुसमाचार का प्रचार विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। इस संदर्भ में मानव जीवन की पवित्रता और सम्मान हेतु आपके विश्वसनीय साक्ष्य विभिन्न स्थानों पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इस विश्वास ने आपको भौतिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी, खासकर पूर्वी क्षेत्र में जो हिंसा, युद्ध और गरीबी के शिकार हैं, कार्य करने को प्रेरित किया है। आपके सुंदर कार्यों जो ईश्वरीय अनंत प्रेम की निशानी हैं, उनके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद अदा करता हूँ। संत पापा ने कोलंबस के शूर वीरों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके मंडल ने संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के प्रति अपनी निष्ठा दिखलाई है और विकारियुस क्रिस्ती कोष इसका एक ठोस उदाहरण है। वर्तमान परिस्थिति जहां हम विभाजन और असमानता को पाते हैं, युवाओं के प्रति आपके निष्ठापूर्ण कार्य उदासीनता के वैश्वीकरण पर विजयी होने में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनता है, जो हमें एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में मदद करेगा। वैटिकन प्रेस प्रवक्ता मत्तेयो ब्रूनी ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस वर्ष 2020 में अपनी प्रेरितिक यात्राओं के क्रम में 31 मई को माल्टा की यात्रा करेंगे। माल्टा गणराज्य के राष्ट्रपति, सरकारी और कलीसिया के अधिकारियों की ओर से प्रेषित निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए 10 फरवरी को वैटिकन प्रेस ने इस समाचार की घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस माल्टा और गोजो की प्रेरितिक यात्रा 31 मई 2000 को करेंगे। इस प्रेरितिक यात्रा हेतु तैयार किया गया प्रतीक चिन्ह, जहां एक हाथ को दिखाया गया है जो क्रूस की ओर इंगित करता है, जहाज की ओर से लहरों की दया पर आता है। हाथ हमारा ध्यान ख्रिस्तीय खुले हृदय की ओर आकर्षित कराता है, जो कठिनाई में अपने पड़ोसी की सेवा हेतु तैयार रहते हैं। नाव हमें माल्टा के प्रद्वीप में संत पौलुस के साथ हुई जहाज डूबने की घटना की याद दिलाती है। यह हमें माल्टा निवासियों द्वारा प्रेरित और जहाज में उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों के बारे में बतलाती है। हाल ही में संत पापा फ्रांसिस ने अपने आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पौलुस और उनके साथ सहयात्रियों का माल्टा पहुंचने का जिक्र किया था। इस प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य है, उन्होंने हमें अद्वितीय करुणा प्रदर्शित किया है। इसके पहले दो संत पापाओं ने माल्टा की अपनी प्रेरितिक यात्रा की। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने सन 1919 में 25 से 27 मई को वहां गए थे। वहीं सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 18 अप्रैल 2010 को माल्टा की अपनी प्रेरितिक यात्रा की थी। उधर रविवार को अपने देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने सीरिया की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने हृदय विदारक अपील को नामीकृत किया। सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से पुनः दर्द भरे समाचार आ रहे हैं, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की स्थिति के संबंध में। इनके साथ ही सैन्य दल की बड़ी उपस्थिति के कारण लोगों को विस्थापित होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। संत पापा ने रविवार ये देवदूत प्रार्थना के उपरांत सीरिया के इदलिब प्रांत की स्थिति के प्रति अपनी चिंता जताई। उन्होंने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उससे संबंधित सभी दलों से आग्रह किया है कि वे राजनीतिक माध्यमों, वार्ता और समझौता की राह का चुनाव करते हुए युद्ध विराम का प्रयास करें, जिससे जीवन की सुरक्षा और नागरिकों की भलाई हो सके। रूस की मदद के फलस्वरूप सीरिया की सरकारी ताकत ने बलपूर्वक इदलिब प्रांत को पुनः अपने कब्जे में करने का प्रयास किया है, जिसके कारण देश में बड़ी विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। देश में व्याप्त इस तनाव के कारण दिसंबर 2019 के शुरू से ही अब तक करीबन 1.5 लाख से अधिक लोगों को अपने जमीर से दखल होना पड़ा है। पिछले 4 दिनों के अंतराल में इदलिब प्रांत में करीब 9,000 लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं, जिसमें अधिकांश लोग तुर्की प्रांत की ओर पैदल यात्रा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने देश में 2011 के मार्च महीने से शुरू हुई गृह युद्ध की स्थिति को देखते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र निर्गत किया था, जिसके नवीनीकरण हेतु उन्होंने पुनः एक पहल की है। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति बशर हफीज अल असद को एक पत्र लिखा था, जो जून 2019 के अंत में कार्डिनल पीटर टर्कसन द्वारा उनके हाथों में सुपुर्द किया गया था। इस पत्र में संत पापा ने राष्ट्रपति से इस बात हेतु निवेदन किया कि वे देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा करें, इदलिब प्रांत में मानवीय तबाही की समाप्ति, विस्थापितों की सुरक्षित वापसी के लिए ठोस पहल, बंदियों की रिहाई और उनके प्रिय जनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए परिवारों तक पहुंचने और राजनीतिक कैदियों के लिए मानवीय स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जाए। देश में शांति बहाल करने हेतु उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति से शांति वार्ता को फिर से शुरू करने और विद्रोही नेताओं के साथ बातचीत करने हेतु आग्रह किया था। सीरिया में शांति बहाल हेतु जोर देते हुए सन 2016 के बाद फिलहाल 2019 में शत्रुता का शांतिपूर्ण विराम शीर्षक पत्र प्रेषित किया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।